Satyanam Namaskrityam
Narayanam Namaskrityam
Narak Chaiva Narottamam
Naram Chaiva Narottamam
Devim Sarasvatim Vyasam
Devim Sarasvatim Vyasam
Tato Jayamudhirae
Tato Jayamudhirae
Nashtaprayeshu Abhadreshu
Nashtaprayeshu Abhadreshu
Nityam Bhagavat Sevaya
Nityam Bhagavat Sevaya
Bhagavate Uttama Shloke
Bhagavate Uttama Shloke
Bhaktir Bhavati Nishtaki
Bhaktir Bhavati Nishtaki
Hare Krishna Om Ajnanat Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshura Vaitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kramaniyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam
Sarvetam Sarvetam
Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने नारद मुनि के उपदेशों पर चर्चा की थी कि किस प्रकार नारद मुनि ये समझाते हैं कि जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है ऐश्वर्य आ जाता है तो उसे एक अहंकार आ जाता है। दामोदर लीला ये हमारे हृदय में बैठे हुए ऐसे ही असुर का वध करने के लिए भगवान ने की। इस दामोदर लीला के द्वारा भगवान ने ये दर्शाया कि जैसे हम सब के हृदय में थोड़ा बहुत अहंकार धन के कारण ऐश्वर्य के कारण या हमारी स्थिति के कारण आ जाता है, जैसे नल कुंवर और मणिग्रीव के हृदय में आया, तो उसको हम लोग दूर कर सकते हैं भगवान को अपने हृदय में बांध कर। जब भगवान बंधे तो फिर उन्होंने उस सारे अहंकार को नाश कर दिया। वो जो दो बड़े बड़े वृक्ष थे अहंकार के स्वरूप हैं, हमारे हृदय में भी ऐसे विशाल वृक्ष हैं और इन वृक्षों को भगवान बड़ी आसानी से गिरा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, अगर हम उनको अपने हृदय में लाएं और उनको हृदय में बांधें। इसीलिए ये उखल बंधन की लीला दाम में, दाम को उदर में बांधना, दामोदर लीला भगवान ने की। क्योंकि जो धन होता है, नारद मुनि समझाते हैं कि हमेशा कष्ट लाता है, हृदय में अहंकार लाता है। चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि अगर किसी के पास धन है तो उसको पहले तो धन अर्जित करने के लिए कष्ट लेना पड़ता है। अर्थानाम अर्जने दुखम, अर्थानाम अर्थ को अर्जन करने के लिए, और ये हम सब जानते हैं धन कमाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, बहुत सारी चिंताओं को लेना पड़ता है तब जाकर धन अर्जित होता है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं अर्थानाम अर्जने दुखम, अर्जन करने के लिए बहुत सारा दुख व्यक्ति को लेना पड़ता है, और फिर जब अर्जन हो जाता है अर्जितम च रक्षणे, तो धन तो आ गया, अब उसका रक्षण करने के लिए और दुख लेना पड़ता है, कष्ट लेना पड़ता है कि कैसे टैक्स बचाएं, कैसे चोर लुटेरों से बचाएं, कैसे अपने घर परिवार वालों से बचाएं। इसीलिए कभी कभी व्यक्ति अपने घर वालों को भी नहीं बताता कि कितना धन है उसके पास, नहीं तो ज्यादा खर्चा करने लगेंगे। तो अर्जितम च रक्षणे, तो अर्जित हो जाता है तो उसका रक्षण करने के लिए बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, हमेशा व्यक्ति चिंता में रहता है। अये दुखम व्यय दुखम, चाणक्य पंडित कहते हैं कि आता है तो दुख लाता है, व्यय हम लोग उसको खर्चा करते हैं तो भी दुख होता है ना। जब कुछ खरीदने जाते हैं, कुछ चीज लेने जाते हैं, तो दुकान वाला कहता है कि अरे ये 100 रुपए की है, बोलते हैं बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो, 70 रुपए में दे दो, बोलते नहीं नहीं। तो व्यय दुखम, देने में बड़ा दुख होता है, अये दुखम व्यय दुखम। तो ऐसे धन का क्या लाभ है, चाणक्य पंडित कहते थे कार है ऐसे धन के लिए, जिसको हम लोग केवल धन संचय नहीं करते हैं, कष्ट संचय करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम धन संचय कर रहे हैं, लेकिन केवल कष्ट का संचय हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को जानना चाहिए कि ये धन जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगता है तब तक केवल कष्ट देता है, क्योंकि संपत्ति सारी भगवान की है, शक्ति भगवान की है, और उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, दानी बनना चाहिए। चाणक्य पंडित एक अन्य श्लोक में बताते हैं कि सबसे बड़ा दानी कौन है, बहुत सुंदर वो श्लोक है। वो कहते हैं कि कृपणा नाम समोदानी, कृपण अर्थात जो व्यक्ति कंजूस है उसके समान दानी, कृपणा नाम समोदानी न भूतो न भविष्यति। कहते हैं कि जो कृपण कंजूस व्यक्ति है उससे बड़ा दानी कोई नहीं है, न भूतो न भविष्यति, न पहले था न आगे होगा। तो कैसे कंजूस व्यक्ति कैसे दानी हो सकता है, कंजूस व्यक्ति तो पैसा ही नहीं देता है, अपने लिए भी खर्चा नहीं करता है, तो फिर वो कैसे दानी हो सकता है। कई बार ये कथा हमने बताई है कंजूस व्यक्ति की, कि किसी ने उससे कहा कि अरे तुम इतना पैसा है तुम्हारे पास और सूखी रोटी खाते हो, कम से कम घी लगाया करो उसमें। तो बहुत कहने के बाद घी का डब्बा ले आया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई डब्बा खोलने की, तो गरम गरम चपाती बाहर से ही डब्बे पर चिपका देता था कि कहीं घी खत्म नहीं हो जाए अगर खोला तो। तो कृपणा नाम समोदानी न भूतो न भविष्यति। तो अगर ऐसा व्यक्ति है जो कृपण है वो दानी कैसे हो सकता है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं अस्पर्शेन, वो स्पर्श भी नहीं करता है अपने धन को, लेकिन वो दूसरों को बांट देता है, कब, मृत्यु के बाद, है ना। जीवन भर वो छूता नहीं है, मेरा पैसा अलग अलग आग के रखो, किसी को छूने नहीं देता, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, चला जाता है। तो कहते कितना बड़ा दानी है, अपने पैसे को स्पर्श किए बिना दूसरों को दान दे देता है, न भूतो न भविष्यति, ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर धन है हमारे पास तो भी कष्ट है, धन हम खर्चा करते हैं तो कष्ट है। तो इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि व्यक्ति को अकिंचन होना चाहिए, गरीब होना चाहिए। गरीब अर्थात यहां नारद मुनि केवल यह नहीं कह रहे हैं कि धन से गरीब होना चाहिए, कि धन नहीं है, धनहीन व्यक्ति। वो समझाते हैं कि व्यक्ति को गरीब होना चाहिए अर्थात जो बहुत जन्मों से धन हमने अपने हृदय में अर्जित करके रखा है उसको त्याग देना चाहिए। ये भी तो हमारा धन है ना, हमने अपने हृदय के अंदर हम किस चीज को रखते हैं जो बहुत प्रिय होती है ना। इसीलिए वो पिक्चरों में कहते हैं युवक युवती कि मैं तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूं या चाहती हूं, है ना। तो हृदय में वो रहते हैं जो बहुत प्रिय होते हैं, और हमारे हृदय में क्या है, कई जन्मों से यही सारे काम क्रोध लोग इसको बहुत संभाल कर रखा है, बाहर निकलने नहीं देते हैं हम लोग। तो ये जो धन है हमारा, हम लोग भी बड़े धनवान व्यक्ति हैं, कोई कम नहीं है हम लोग, कई कई जन्मों से इतना सारा धन अर्जित करके रखा है। तो उस धन को त्याग देना, तब भगवान त्वाम अकिंचन गोचर, तो भगवान ऐसे गरीब व्यक्तियों के लिए, ऐसे धनहीन व्यक्तियों के सुहृत बन जाते हैं, प्रिय बन जाते हैं, जो जन्मों से संचित धन को त्याग देते हैं, अर्थात केवल अर्थ नहीं, केवल कुछ पैसा नहीं, लेकिन जो हमारे हृदय में वासनाएं हैं, हमारे हृदय में जो काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, इसको त्यागना, प्रेम दर्शाना। कल हम शाम को बच्चों के साथ चर्चा कर रहे थे, शाम को क्लास होती है बच्चों की, कि दीपावली के दिन क्या सीखना चाहिए। तो दीपावली के दिन ये सीखना चाहिए कि जैसे भरत महाराज ने त्याग किया, और त्याग से प्रेम उत्पन्न होता है। श्री राम राज्य को छोड़कर चले गए थे, और कल के दिवस पर या दीपावली के दिवस पर वो वापस आए थे, और दीपावली के दिवस पर ही उन्होंने राज्य संभाला था। तो भरत महाराज ने 14 वर्ष तक उस राज्य को स्पर्श नहीं किया, राज सिंहासन पर बैठे नहीं, प्रवेश भी नहीं किया राज्य में, अयोध्या के बाहर रहते थे। तो उन्होंने त्याग किया। दूसरों के लिए त्याग करने से हम प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। जब केवल अपने लिए रखते हैं तब प्रेम उत्पन्न नहीं होता, जब देते हैं। श्री राम ने तुरंत राज्य भरत को दे दिया, और राज भरत ने तुरंत श्री राम को वापस दे दिया, उसने भी रखा नहीं। तो इससे दोनों का आपस में प्रेम बढ़ा। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी व्यक्ति उस राज्य को रख लेता तो हो सकता है वो प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इसलिए भरत महाराज ने कहा था श्री राम से कि अगर 14 वर्ष पूरे होते ही आप अयोध्या में प्रवेश नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो देखिए कितना प्रेम था। भरत ने यह नहीं कहा कि अगर 14 वर्ष बाद आप नहीं आए तो गया राज्य आपका, तो फिर आना नहीं वापस, फिर मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर 14 वर्ष तक नहीं आए तो आप राज्य ले या ना ले, लेकिन मैं प्राण त्याग दूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। ये प्रेम था भरत महाराज का। तो प्रेम उत्पन्न होता है जब हम किसी के लिए त्याग करना सीखते हैं। जब अपने लिए केवल कार्य करते, स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। इसीलिए भक्त ये हरेक से प्रेम करते हैं और हरेक व्यक्ति उनसे प्रेम करता है, क्योंकि उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। वो अपने लिए कार्य नहीं करना चाहते, वो देना चाहते हैं। और जहां ये देने की भावना बढ़ती है, जहां ये कृपणता चली जाती है, तब प्रेम उत्पन्न होता है। तो अगर हम सही में किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें उसे देना सीखना चाहिए, और वही प्रेम अगर हम कृष्ण से करना चाहते हैं तो उन्हें भी देना सीखना चाहिए, अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पण करना चाहिए, तब हम कृष्ण से सही दृष्टि में प्रेम कर सकेंगे। ये प्रेम की परिभाषा है, ये प्रेम की योग्यता है, लक्षण है कि देना सीखें। आज तक हम अपने जीवन में केवल लेना सीखते हैं, मुझे क्या मिलेगा। लोग भक्ति करने आते तो भी सोचते कि भक्ति करने से मुझे क्या मिलेगा, क्या मेरा व्यापार अच्छा हो जाएगा, क्या मेरा परिवार में सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो ये भक्ति करने के उनके उद्देश्य होते हैं। केवल हम लेना चाहते हैं, कृष्ण के पास आकर भी लेना चाहते हैं, लेकिन हमें कृष्ण को देना सीखना चाहिए। और ये आज की लीला, दामोदर लीला, हमें सिखलाती है। यशोदा माता ने दिया, लिया नहीं कृष्ण से। तो ऐसा जब हम भाव उत्पन्न करते हैं तब हम कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं। इसीलिए त्वाम अकिंचन गोचर, आप ऐसे भक्तों के प्रेमी हैं, ऐसे भक्तों को प्रेम करते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है। और जो व्यक्ति सब त्याग देता है वो असली आनंद में आता है। हम में से जो लोग अभी तक चीजों को पकड़े हुए हैं वो उस आनंद की अनुभूति या उस आनंद का अनुभव भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आनंद सब कुछ त्याग कर देने में आता है। इसीलिए बड़े बड़े महात्माओं ने अपना सब कुछ त्याग किया, जैसे कि षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, क्या नहीं था उनके पास। एक राजा की तरह रहते थे, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ त्याग दिया। और कैसे त्याग दिया और क्या थे वो मंडलपति। षड गोस्वामी अष्टक में कहा गया है कि मंडलपति अर्थात पृथ्वी के स्वामी राजा की तरह थे, लेकिन त्यक्त्वा त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत्, उन्होंने उसको त्याग दिया और इसीलिए कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी उनका ऐश्वर्य इंद्र के समान बताया गया, उन्होंने उसको त्याग दिया। तो जब तक ये वैराग्य त्याग की भावना कृष्ण के लिए वैराग्य हमारे हृदय में नहीं आता है, हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते। तो इसीलिए चाणक्य पंडित बताते हैं कि धन को जब तक हम लोग रखते हैं, जिस भी चीज को धन को रखते हैं तो धन से प्रेम होता है, आसक्ति को रखते हैं तो आसक्ति से प्रेम बढ़ जाता है, अपने वासनाओं को रखते हैं तो वासनाओं से प्रेम बढ़ जाता है, इसलिए त्याग देना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भागवत में बतलाते हैं कि जब बादल वर्षा के जल को अपने अंदर समेटे रखते हैं तो फिर काले काले रहते हैं घने बादल, लेकिन जब वही बादल वर्षा का जल दे देते हैं, वर्षा में सारा जल पृथ्वी को दे देते हैं, तो फिर उसके बाद चमकने लगते हैं, तेज आ जाता है, अर्थात वो सुखी हो जाते हैं क्योंकि पकड़ कर नहीं रखा, त्याग दिया सब। तो इसीलिए नारद मुनि ने उपदेश दिया कि धन के कारण हमें ये कष्ट होते हैं, और फिर आगे नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। श्राप का ये तो वरदान था, नारद मुनि ने सोचा कि मेरी कृपा से इन्हें कृष्ण के दर्शन होने चाहिए, तो इसीलिए श्राप दिया कि देवताओं के 1000 वर्षों तक आप नंद बाबा के आंगन में या ब्रज में आप उस आंगन में रहिए जहां आगे चलकर कृष्ण आएंगे, वृक्ष बन जाइए। तो फिर वे लोग वृक्ष बने और फिर ये दिवस था दीपावली का, जब भगवान ने ये दामोदर लीला की, या कहना चाहिए नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया, जो ब्रज में जिन्होंने अपना स्थान लिया था। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, करते करते उन्होंने उस लीला का वर्णन किया जहां भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया यशोदा माता को, और फिर उसके बाद फिर से उन्होंने अपना पुत्र मान लिया, वो भूल गई सब। पहले तो सोचने लगी कि ये तो भगवान है, अरे मैं क्या कर रही थी इसके साथ, अब से इसको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन फिर सब योग माया के प्रभाव में भूल गई और फिर से अपना पुत्र मानने लगी। तो सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि यशोदा कृष्ण को अपना पुत्र मानती थी। तो इसको सुनकर परीक्षित महाराज के हृदय में मन में एक प्रश्न आया, और उन्होंने ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से किया। तो आज इस प्रश्न का, प्रश्न पर चर्चा और प्रश्न के उत्तर में जब सुखदेव गोस्वामी दामोदर लीला का वर्णन करेंगे तो हम लोग उस लीला को सुनेंगे। तो आइए इस श्लोक को, इस प्रश्न को पढ़ते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किया। श्रीराजो वाच नंद किम करोत् ब्राह्मण श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपो यस्य स्तनं हरिः नंद किम करोत् ब्राह्मण श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपो यस्य स्तनं हरिः नंद किम करोत् ब्राह्मण श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपो यस्य स्तनं हरिः तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से। वो कहते हैं, नंद किम अकरोत ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी, कृपया आप ये बतलाइए कि नंद किम अकरोत, नंद महाराज ने क्या किया था, किम अकरोत, ऐसा क्या किया था, श्रेय एवं महोदयम, कि उनके भाग्य का उदय हो गया, उदय ही नहीं महाउदय हो गया, महोदयम। और फिर वो आगे कहते हैं कि नंद महाराज का तो ठीक था, उनका तो भाग्य है ही, लेकिन यशोदा च महाभागा, यशोदा का तो बहुत बड़ा भाग्य है, महाभाग्य है उसका। और क्यों है, पपौ यस्य स्तनम हरि ही, क्योंकि वो हरि भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने उसका स्तनपान किया। तो ऐसा क्या किया था इन दोनों ने, बहुत भ्रम में पड़ गए परीक्षित महाराज। और ये प्रश्न उन्होंने तब किया जब उन्होंने सुना कि यशोदा उन्हें अपना पुत्र मानती है, कृष्ण को। ये प्रश्न उन्होंने तब नहीं किया जब देवकी और वसुदेव के सामने कृष्ण प्रकट हुए थे अपने चतुर्भुज रूप में। ये प्रश्न उन्होंने तब नहीं किया जब यशोदा ने ब्रह्मांड देखा कृष्ण के मुख में, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कितना बड़ा भाग्य है यशोदा का, इतना उसने विश्व रूप देखा, सारे ब्रह्मांडों को देखा जिसको देखना संभव नहीं है। ये प्रश्न तब नहीं किया, लेकिन कब किया, जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि यशोदा तो उन्हें अपना बालक मानती है, आत्मजा, अपना ही बच्चा मानती है, और ऐसे ही बच्चा मानकर वो उनके साथ उनकी बाल लीलाओं को, बाल लीलाओं का आस्वादन कर रही है। तो उस बात को सुनकर परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न किया, अर्थात विश्व रूप देखना, ब्रह्मांड देखना इत्यादि, ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना भगवान के साथ उनकी बाल लीलाओं में भाग देना। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि ऐसा क्या किया था इन दोनों ने। और फिर आगे वो पूछते हैं श्लोक के बाद, अगले श्लोक में, कि जन्म तो हुआ था कृष्ण का देवकी से, वसुदेव से, लेकिन देखिए उनको भी ये भाग्य नहीं मिला, उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाएं नहीं देखी क्योंकि वो तो जेल में बंद थे, कंस ने बंद कर दिया था। तो फिर यशोदा और नंद महाराज, इन्होंने ऐसा क्या किया था जो देवकी ने भी नहीं किया, वसुदेव ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, इनको ये भाग्य मिला। तो जब उन्होंने ऐसा प्रश्न किया तो सुखदेव गोस्वामी जान गए कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि देवकी और वसुदेव से श्रेष्ठ हैं यशोदा और नंद महाराज। तो उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया, एक दृष्टि से वो समझा रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए परीक्षित महाराज, यशोदा और नंद ये देवकी और वसुदेव ही हैं, इसलिए उन्होंने भी आस्वादन किया, जैसे शब्दों से कम ऐसा लगता है, क्योंकि तुरंत जैसे ही प्रश्न उन्होंने किया तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहने लगे कि ये जो नंद और यशोदा हैं, ये भगवान के शाश्वत माता पिता हैं, और हम सब जानते हैं आध्यात्मिक जगत में यशोदा माता हैं। तो जब इस पृथ्वी पर कृष्ण आए तो द्रोण और धरा, उन्होंने यशोदा, उन्होंने नंद और यशोदा का रूप लिया, या कहना चाहिए कि उन्होंने नंद और यशोदा के शरीर में प्रवेश किया ताकि वो भगवान की लीलाओं को देख सकें। तो कौन है ये द्रोण, कौन है ये धरा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि द्रोण ये वसुओं में श्रेष्ठ हैं। देवताओं में कई श्रेणियां होती हैं और उनमें से एक श्रेणी है वसु, तो उन वसुओं में श्रेष्ठ हैं द्रोण। तो जैसे जो नरों में श्रेष्ठ होते हैं उनको नरदेव कहते हैं, ऐसे ही जो वसुओं में श्रेष्ठ हैं उनको वसुदेव कहते हैं। तो वही वसुदेव जो वसुओं में श्रेष्ठ हैं जो द्रोण थे, जो वसु थे, ब्रह्मा जी के आदेश पर, सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं, वो देव लोकों से इस पृथ्वी लोक पर आए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि आप जाओ और जाकर गोपालन करो। वैसे वो वसु हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम लोग पृथ्वी पर जाएंगे और गोपालन करेंगे। लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा कि उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप हमें कह रहे हैं कि हमें पृथ्वी पर जाना है, गोपालन करना है, तो ये ठीक है, हम करेंगे, लेकिन हमें एक आशीर्वाद दीजिए। और उन्होंने क्या आशीर्वाद मांगा? उन्होंने कहा कि जब हम पृथ्वी पर जाएं, जब हम गोपालन करें, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इनको अपने पुत्र के रूप में पाएं, इनकी हम सेवा करें, ऐसे कृष्ण की जो बाल लीलाएं करते हैं उनकी हम सेवा करना चाहते हैं और उनकी सेवा से आनंद लेना चाहते हैं, तो आप हमें यह आशीर्वाद दीजिए। और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी का आदेश पाकर फिर द्रोण और धरा इस पृथ्वी पर आए। बहुत तपस्या की उन्होंने। यहां आचार्य समझाते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि द्रोण और धरा को भगवान की प्राप्ति हुई केवल गुरु के आदेशानुसार। अगर ब्रह्मा जी आदेश नहीं देते कि आप पृथ्वी पर जाइए और गोपालन कीजिए, तो उनको कृष्ण नहीं मिलते। इसीलिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम गुरु के आदेश के अनुसार चलें, और गुरु के आदेश से ही हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। कि अगर गुरु और गोविंद अर्थात कृष्ण दोनों खड़े हैं, तो मैं किसके पांव पहले पड़ूं, किसको पहले प्रणाम करूं? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, किसके पैर छूना चाहिए, किसको प्रणाम करना चाहिए पहले? तो कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, पहले गुरु का करना चाहिए। क्यों? गोविंद दिया मिलाए। कृष्ण को किसने मिलाया आपसे? किसने बताया कि कृष्ण भगवान है? कौन आपको लेके गए कृष्ण तक? वो गुरु है। तो इसीलिए हमें गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर जब वे लोग इस पृथ्वी पर आए, तब उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हुई, तब उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए। इसलिए अगर हम लोग भी चाहते हैं कि अपनी भक्ति की पूर्णता को प्राप्त करें, और भक्ति की पूर्णता क्या है? कृष्ण के चरण कमल। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें वो चरण कमल प्राप्त हो, वो भक्ति प्राप्त हो, वो प्रेम प्राप्त हो, तो हमें गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। केवल एक ही मार्ग है जिसको हम शुरुआत में तो बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं, हमारे हृदय में वो अहंकार आ जाता है कि हम बड़े श्रेष्ठ हो गए हैं, 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष से भक्ति कर रहे हैं और बाकी लोग अभी अभी आए हैं, नए लोग हैं। तो ऐसे अहंकार से हम गुरु का अपमान कर बैठते हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं कर पाते। क्योंकि हर गुरु, हर एक प्रमाणिक गुरु का पहला आदेश होता है हृदय में नम्रता लाना। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही आदेश दिया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर सदा हरि का कीर्तन करना चाहते हैं, सदा भगवान के संपर्क में रहना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो फिर तृणादपि सुनीचेन। तो इसीलिए गुरु के आदेशों का अगर हम पालन करते रहेंगे, तो कभी हमारे हृदय में अहंकार नहीं आएगा, कभी हम भक्ति से दूर नहीं जाएंगे, कभी हम भक्तों का अपमान नहीं करेंगे, वैष्णव अपराध नहीं करेंगे। और फिर उसके द्वारा, इस आदेश के पालन के द्वारा, जैसे द्रोण और धरा को भगवान की प्राप्ति हुई, वैसे ही हम भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ द्रोण और धरा की एक योग्यता भी थी, उनकी योग्यता थी लालसा, कृष्ण को पुत्र के रूप में पाने की लालसा, ये उनकी योग्यता थी। और फिर गुरु की कृपा, गुरु का आदेश जिसके द्वारा कृष्ण प्राप्ति हुई। तो हमें भी पहले हृदय में इच्छा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। जब हम हृदय में इच्छा उत्पन्न करते हैं, तीव्र इच्छा कृष्ण को पाने की, तो फिर उस इच्छा से हमें मार्ग निर्देशन मिलता है, गुरु मिलते हैं। भगवान जो हमारे हृदय में इस चेत गुरु के रूप में चित्त में बैठे हैं, वो जब देखते हैं कि इस जीव की तीव्र इच्छा है मुझे पाने की, कृष्ण को पाने की, भक्ति करने की, तो फिर वो एक गुरु से मिलाते हैं, फिर हमें मार्गदर्शन मिलता है। और फिर उस मार्गदर्शन का बड़ी कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये क्रमबद्ध प्रगति है हमारी भक्ति में, पहले इच्छा और फिर मार्गदर्शन, और फिर उस मार्गदर्शन का हम कड़ाई से पालन करें, नियमों का कड़ाई से पालन करें, तब भक्ति में दृढ़ता आती है। और वो दृढ़ भक्ति हमें भगवान को पूर्ण समर्पण करने में मदद करती है। और जब हम समर्पण करते हैं भगवान को, तब हम उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भगवान को समर्पण करता है, भगवान के पास देने के लिए कुछ रह नहीं जाता, वो अपने आप को ही दे देते हैं। जब तक कोई समर्पण नहीं करता, भगवान से इच्छाएं करता रहता है, भगवान धन दीजिए, रूप दीजिए, बड़ी प्रसिद्धि दीजिए, भगवान देते रहते हैं, ले जाओ, अच्छा है, मेरा स्टॉक कम हो रहा है थोड़ा। तो जब तक ये जीव इच्छा करता रहता है, रूपम देही धनम देही, हे भगवान सुंदर रूप मिल जाए, काश में बहुत सुंदर रूप को प्राप्त करूं, तो भगवान दे देते हैं। अगले जन्म में बहुत सुंदर हो जाता है व्यक्ति, हे भगवान बहुत धन मिल जाए, धन मिल जाता है। और लोग कामना करते रहते हैं इस बात की, भक्ति करते करते। बड़ा घबराना चाहिए हम लोगों को अपनी इच्छाओं से, खास करके भक्ति में आने के बाद। ऐसा बताया जाता है कि जब हम जप करते हुए, भक्ति करते हुए हृदय में जो इच्छा रखते हैं, तो क्योंकि भगवान का नाम और क्योंकि भगवान के भक्त वैष्णव एकलपतरु के समान है, हम लोग रोज ये कहते हैं, वांछा कल्पतरु भेष कृपा सिंधु देव च। तो क्योंकि वैष्णव कल्पतरु हैं और कल्पतरु वृक्ष के समक्ष जाकर आप जो भी इच्छा करेंगे वो पूरी हो जाती है कि नहीं? इसी को तो कल्पतरु कहते हैं। वो एक कथा है ना कि एक व्यक्ति एक बार, उसको कल्प वृक्ष कहाँ है वो ढूंढने जाना था, तो बहुत बहुत चलता रहा, किसी ने बताया उस दिशा में जाओ मिल जाएंगे कल्प वृक्ष, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बहुत थक गया। फिर एक स्थान पर आकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया छांव में, बहुत गर्मी लग रही थी, घना जंगल था, उसको पता नहीं था वो कहाँ बैठा है। तो उसने इच्छा की, सोचने लगा कि अरे ये कितना घना जंगल है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर शेर आ जाए। अचानक शेर आ गया वहां पर, घबरा गया एकदम, कह रहे ये शेर यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो कल्प वृक्ष ढूंढने जा रहा था, अब तो ये शेर मुझे खा जाएगा। शेर खा गया उसको, क्योंकि वो भूल गया, वो समझ नहीं पाया कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, जो इच्छा कर रहा था वो पूरी हो रही थी। तो हम सब भी भक्ति में इसी समान है। रोज कहते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, कि जो वैष्णव हैं वो कल्प वृक्ष के समान है, और उन्हीं वैष्णवों के सामने हम बैठे रहते हैं और क्या इच्छा करते हैं, धनम देही रूपम देही, थोड़ी सी मेरी प्रसिद्धि हो जाए, थोड़ा ये मिल जाए वो मिल जाए, तो फिर मिल जाता है, कोई गलत नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे फला फला व्यक्ति ने इतना गलत काम किया, फिर भी इतना पैसा है उसके पास, उसने इच्छा की कल्प वृक्ष भगवान ने दे दिया। तो इसलिए घबराना चाहिए हम लोगों को कि मंदिर में आके भगवान के सामने, वैष्णवों के सामने क्या इच्छा करें, क्योंकि जो इच्छा आप करेंगे वो पूरी हो जाएगी, फिर भक्ति नहीं मिलेगी। अगर हमने इच्छा कर दी कि ठीक है भगवान मैं जप तो कर रहा हूं, लेकिन देखो थोड़ा बहुत पैसा होता तो कितना अच्छा होता, आपकी भक्ति अच्छी तरह से करता। हम लोग अपने आप को युधिष्ठिर समझने लगते हैं। युधिष्ठिर ने भी ऐसी कामना की थी भगवान के पास जाकर, बहुत धन चाहिए बहुत धन चाहिए। पर कृष्ण ने कहा क्या हो गया युधिष्ठिर महाराज, आप तो इतने अच्छे भक्त हैं, बहुत धन चाहिए मुझे। क्यों चाहिए? ताकि जगत में फिर कोई ऐसा नहीं कहे कि आपका जो भक्त होता है उसके पास कुछ नहीं होता। आप उसका सब कुछ हर लेते हो, आप हरि हो, इसलिए बहुत धन दे दीजिए मुझे ताकि मैं सारे जगत को दिखाऊं कि देखो भगवान के भक्त के पास भी कितना सारा धन हो सकता है। तो फिर ऐसे अगर हम इच्छाएं करते हैं भगवान के सामने आकर, तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। लेकिन जब कोई पूर्ण समर्पण करता है, कुछ मांगता ही नहीं है भगवान से, आता है भगवान की सेवा करता है, भगवान बोलते कुछ चाहिए, बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, अगले दिन फिर आता है सेवा, भगवान कुछ चाहिए नहीं चाहिए, भक्त पूछते कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, तो क्या करना है, बस सेवा करना, हार बना रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, भगवान की अन्य सेवा कर रहा हूँ, भोग बना रहा, भगवान पूछते कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान भी थक जाते हैं एक दिन पूछ पूछ के, यार इसको कुछ चाहिए ही नहीं, ये कैसा व्यक्ति है। तो भगवान अंत में पूछते, अरे कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ नहीं, मैं चाहिए, हाँ आप चाहिए, अच्छा ठीक है। अंत में भगवान पूछते सोचते वो भी मना करेगा, भक्त वो मना नहीं करता है, भक्त भी बड़ा चतुर होता है, वो वेट करता है जब तक अंत में भगवान कहे कि मैं आ जाऊं, बोले हाँ आ जाओ आप आ जाओ। तो भक्त हमेशा कृष्ण को पकड़ते हैं, अर्जुन ने कृष्ण को चुना क्योंकि भक्त जानते हैं कि जहां कृष्ण है वहीं सारा सुख है, और कहीं सुख नहीं है, इस धन में, इस माया में, इस परिवार में, समाज में केवल कष्ट है, और सब जानते हैं इस बात को। कल हमें एक भक्त बतला रहे थे, मैं भक्त से चर्चा कर रहे थे, उनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो बता रहे थे कि मैंने एक विवाहित व्यक्ति से पूछा, उनके कोई रिश्तेदार से, कि आपका क्या मानना है, मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल मत करना, तब सब जानते हैं कष्ट है, लेकिन फिर भी हमारी आसक्तियों के कारण, हमारी बद्धता के कारण वही कार्य बार बार करते रहते हैं, पुनः पुनश्चर्वित अचर बनाना, और उसी में आनंद लेते हैं। इसीलिए भक्त को केवल भक्ति की कामना करनी चाहिए, भगवान को उस स्तर तक लेकर आना चाहिए जहां भगवान कह रहे मेरे पास सब कुछ नहीं बचा, देने के लिए अपने आप को देता हूं, तो बोलना चाहिए वेरी गुड आ जाओगे जल्दी से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही समझाते हैं कि हमें ऐसी सेवा करनी चाहिए कि भगवान देखें आकर, अरे कौन है ये जो इतनी सेवा कर रहा है। और ये उदाहरण हमने शास्त्रों में भी देखे, स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उदाहरण है, वो अपने गुरु के पास गए, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, कहा मुझे दीक्षा दीजिए, उन्होंने कहा नहीं दूंगा, तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं अनपढ़ व्यक्ति हूं, कैसे तुम्हें दीक्षा दे सकता हूं। तो फिर उन्होंने बहुत से वापस गए, जब वापस चले गए भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछा क्या हुआ दीक्षा ली, तो उन्होंने कहा नहीं, गौर किशोरदास बाबा जी कह रहे हैं कि मैं दीक्षा नहीं दे सकता। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा जब तक दीक्षा नहीं लो इस घर में कदम मत रखना, वही एक महान भक्त है, महान वैष्णव है, उनसे जाओ दीक्षा लो। तो फिर गए सेवा की उनकी, कुछ नहीं कहा, केवल सेवा करते रहे अपनी, इतनी सेवा की तो गौर किशोरदास बाबा जी बाध्य हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने भी यही किया, बाध्य किया अपने गुरु को, बाध्य किया प्रेम से, सेवा से, और इसी तरह हम बाध्य करते हैं कृष्ण को प्रेम से और सेवा से बंधने के लिए हमारे हृदय में। इसलिए ऐसी सेवा हमें करनी चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है सेवा करते करते हृदय में आता है इच्छाएं, तो वो ये इच्छा है कि हृदय में भगवान पूछ रहे हैं कुछ चाहिए, तुरंत उस इच्छा को निकाल देना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं, तब फिर भगवान प्राप्त होंगे। तो द्रोण और धरा इन्होंने तीव्रता भगवान को पाने की अपने हृदय में लाई है, और इस कारण से फिर गुरु का आशीर्वाद मिला ब्रह्मा जी का, और तब वो इस जगत में आए, बहुत तपस्या की उन्होंने, और फिर अगले जन्म में उनको यशोदा और नंद महाराज के रूप में भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ इस प्रश्न का ये उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दिया, और फिर उसके बाद वो इस दामोदर लीला का वर्णन करने लगे। ये दामोदर लीला दीपावली के दिवस पर हुई थी, भगवान के जन्म के 3 वर्ष बाद, भगवान 3 वर्ष के थे, अर्थात जन्माष्टमी हुई थी, 3 वर्ष के हो गए थे जन्माष्टमी पर, और फिर जन्माष्टमी के बाद 1 या 2 महीने, 2-3 महीने जब भी समय होता है कार्तिक का प्रारंभ, तो उतना ही समय हुआ था, और भगवान ये सुंदर लीला को करना चाहते थे क्योंकि अभी तक तीन साल के हो गए और ऊपर दो महीने तीन महीने भी हो गए, लेकिन यशोदा माता ने डांटा ही नहीं था अभी तक, बड़े प्रेम से रखा था, हाय मेरा लल्ला, हाय मेरा लल्ला। कृष्ण अच्छा लग रहा था कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ने सोचा रे तीन साल हो गए अभी तक डांटा ही नहीं है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि बड़े जोर से डांटे, और डांटे ही नहीं बांध दे मुझे, दंड दे। अभी तक दंड नहीं दिया था, यशोदा कभी भी बालक को डांटती भी नहीं थी, घबरा जाती थी कि अगर मैंने कहीं डांट दिया तो ये भयभीत हो जाएगा। वैसे शास्त्रों में भी नियम है कि छोटे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, जब तक बच्चा, ऐसे बताते हैं कि जब 10 साल तक का हो तो उसको मारना नहीं चाहिए, 10 साल तक बच्चे को कभी। आजकल हम लोग देखते हैं माताएं छोटे छोटे बच्चों को तमाचा लगा देती हैं, जरा सर होता है धाड़, हम लोग देखते हैं मंदिर में भी देखते हैं कभी कभी, जरा कोई जिद करता है फटा, रोज दिवाली होती है उनकी, पटाखे बजते हैं। कि शास्त्र बतलाता है कि 10 साल तक बच्चे को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे को समझाना चाहिए, उसको सिखलाना चाहिए, फिर 10 साल से 15 साल तक थोड़ा बहुत डांटना टपटना चाहिए, क्योंकि वो समय है कि जहां उसको सिखलाना चाहिए चीजें कैसे करना है, और फिर जब 15 साल का हो जाए उसके बाद उसके मित्र हो जाना चाहिए, फिर उसको जब मित्र हो गए तो फिर मारना नहीं डांटना नहीं। तो ये नियम है शास्त्रों का, लेकिन आजकल तो कोई पालन नहीं करते। तो इसलिए यशोदा माता भी वो कभी डांटती नहीं थी, तो कृष्ण को इच्छा हो रही थी कि माँ डांटे मुझे, मारे, थोड़ा डराए धमकाए, उसका आनंद लेना चाहते थे। कृष्ण जब आध्यात्मिक जगत में रहते हैं गोलोक वृंदावन में, जय श्री राधा गोकुलानंद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमण्य की, भविताय की। कृष्ण जब आध्यात्मिक जगत में रहते हैं तो उनको ये आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि वहां वो छोटे बालक नहीं है, वहां वो 3 साल के नहीं है, वहां उनका शाश्वत रूप है, वहां जिस अवस्था में है 14 साल के बालक बस वैसे ही रहते हैं, न बड़े होते हैं न छोटे होते हैं, एक ही रूप है, शाश्वत रूप। हम उस दिन भी वर्णन कर रहे थे ना कि इस चीज को समझना बड़ा कठिन है कि शाश्वत उसी तरह रहते हैं, 14 साल के ही रहते हैं, न छोटे न बड़े। आजकल तो अगर ऐसा होगा यहां पर कोई माता पुत्र को प्रेम करेगी, पुत्र 2 साल का है, बड़ा गोदी में उठाकर उसको प्रेम करे, लेकिन पता चले वो बच्चा बड़ा ही नहीं हो रहा, 2 साल का ही रह रहा है, तो कितने दिन प्रेम करेगी, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, फिर देखेगी बड़ा ही नहीं हो रहा, एक चमाटा लगाएगी उस पर, बड़ा हो बोर हो गई मैं ऐसे उठा उठा के, दो दिन में बड़ा ही नहीं होता। लेकिन वहां पर कृष्ण ऐसा ही है, और यशोदा माता कभी बोर नहीं होती है कि ये क्या है, न छोटा होता है न बड़ा होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये शाश्वत आनंद है, इस जगत का आनंद शाश्वत नहीं है, इसीलिए अगर बच्चा बड़ा नहीं होगा तो ऑपरेशन करवाएगी माँ जाकर, शायद ले जाएगी डॉक्टर को, दिखाएगी देखो इसको कुछ हो गया है, बड़ा ही नहीं हो रहा। तो उस बाल्य लीला का आस्वादन करने के लिए गोलोक से भगवान को यहां इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो इसलिए जब यहां आते हैं तो सोचते सारे आनंद ले लूं, फिर वापस गोलोक में जाऊंगा, वहां तो ये आनंद मिलना नहीं है। तो वहां यशोदा माता डांटती भी नहीं है, क्योंकि इतने छोटे नहीं है, वहां पर डांट नहीं खा सकते, बांधती नहीं है, तो फिर इसीलिए यहां पर आते हैं। इसको नैमित्तिक लीलाएं कहते हैं। भगवान की लीलाओं में 2 भाग होते हैं, एक नित्य लीला और एक नैमित्तिक लीला। नित्य लीला जो उनके धाम में चलती है, नैमित्तिक लीला जो यहाँ अलग अलग ब्रह्मांडों में आते हैं और लीलाएं करते हैं। तो फिर भगवान की इच्छा हुई कि थोड़ा बहुत माँ डांटे डराए धमकाए, तो इसीलिए ये दामोदर लीला उन्होंने की। तो यहाँ पर इस लीला को प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले यशोदा का वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन माता यशोदा का किया गया है, कैसी दिखती थी, क्या पहना था। श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर कोई भक्त बड़े प्रेम और श्रद्धा से केवल यशोदा माता के इस वर्णन को सुन लेता है तो उसके हृदय में कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम जागृत हो जाता है। तो इस वर्णन को सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भागवत के इस 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में कर रहे हैं। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तत्वालचरितानि च दधे निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। यशोदा माता का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं कि एकदा एक दिन यशोदा नंद गेहिनी, यशोदा माता ने घर में जितने भी सेविकाएं थी नंद गेहिनी जो सेवा करती थी उनको दूसरे कार्यों में लगा दिया और फिर वो क्या करने लगी, कर्मांतर नियुक्तासु, नियुक्त कर दिया अलग अलग कर्मों में उन्होंने, और फिर वो क्या करने लगी, निर्मन्मंथ स्वयं दधि, जो दधि थी दही उसका स्वयं खुद निर्ममंथ मंथन करने लगी यशोदा माता। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आज से पहले यशोदा माता ने दही मंथन नहीं किया था क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं थी, बहुत सारी सेविकाएं थी घर में तो वो सब ये कार्य किया करती थी, दही जमाना, दूध निकालना, दही का मंथन करना, उससे माखन निकालना, ये सब सेविकाएं करती थी। यशोदा माता केवल कृष्ण की सेवा करती थी लेकिन आज वो ये खुद कार्य कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि बहुत समय से बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, सारे ब्रज की स्त्रियां यशोदा माँ को आकर कहती थीं कि ये जो तुम्हारा लाला है ये दिखने में तो बड़ा आकर्षक है, बड़ा मासूम है, लेकिन है बड़ा बदमाश, ये चुपके से आता है हमारे घरों में और आकर माखन चुरा लेता है और खुद तो खाता ही है फिर बंदरों को भी खिलाता है, और जब हम इनको पकड़ती हैं तो ये कहता है, उस समय हमारे सामने ही हमारे आने से पहले ही बंदरों को खिला चुका होता है, बंदरों का पेट पूरा भर जाता है, और जब हम पकड़ती हैं तो हमारे सामने मक्खन निकाल कर हमारा माखन वो बंदरों को दिखाता और बंदर मुंह घुमा लेते हैं और कहता है कि देखो तुम्हारा माखन तो इतना बेकार है कि बंदर भी नहीं खाते हैं, वो भी मुंह घुमा रहे हैं तो मैं क्यों खाऊंगा तुम्हारा माखन। तो ऐसे करता है और फिर कभी कभी सारी जगह फैला देता है माखन, और फिर क्या करता है कि कभी कभी उसको अगर माखन नहीं मिलता है हमारे घरों में आता है तो हम कहीं माखन छुपा कर रख देती हैं, बहुत ढूंढता है, अगर माखन नहीं मिलता तो हमारा बच्चा सो रहा होता है उसको जोर से ऐसे वो क्या क्या कहते हैं चिंता वैसे करके चला जाता है, फिर रोने लगता है। कभी कभी हमने गायों के बछड़ों को बंद किया होता है, बांधा होता है, तो गुस्से में उनको खोलकर चला जाता है, फिर गाय का बछड़ा सारा दूध पी लेता है, हमारे लिए दूध ही नहीं बचता है। तो ऐसे बहुत सारी शिकायतें आने लगी यशोदा माता के पास कि कैसे कैसे कृष्ण जाते हैं माखन चुराते हैं, और कभी कभी गोपियां आके कहती कि अरे तुम्हारे जो लाला है उसके शरीर पर इतने आभूषण हैं कि हम कभी कभी अंधेरे में रखते हैं लेकिन ये अंधेरे में भी चुरा लेता है। कैसे चुरा लेता है, जो आभूषण तुम पहनाती हो इसको वो इतने चमकते हैं कि अंधेरे में उसको दिखाई दे जाता है। तो यशोदा कहती है कि ठीक है मैं कल से उसको आभूषण नहीं पहनाऊंगी। तो फिर स्त्रियां कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, पहनने दो, अच्छा लगता है, आभूषण पहनने चाहिए। दरअसल स्त्रियों के मन में भी ये होता था कि वो मेरे घर में आए, रोज जो ब्रज वधु हुआ करती थी या जो गोपियां हुआ करती थी वो रोज सुबह अपना माखन जब दही का माखन निकाल कर रखती थी तो रोज ये सोचती थी कि आज कृष्ण इसको चुराना चाहिए। उनके हृदय में भी यह होता था कि कृष्ण ये माखन चुरा ले ताकि मैं जाकर डांटूं पकड़ूं कभी कभी गोपियां पकड़ लेती थी माखन चुराते चुराते और खाता रहता था, तो कृष्ण कहते थे, यशोदा से आकर वो शिकायत करती थी कि कृष्ण को जब हम पकड़ लेते हैं माखन खाते हुए, तो कृष्ण कहते हैं कि क्या मेरे घर में माखन नहीं है, कितना सारा माखन नंद बाबा ने रखा, 9 लाख गाय है, मेरे घर में क्या माखन की कमी है, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा माखन खाने के लिए। वैसे आचार्य कहते हैं, समझाते हैं कि कृष्ण माखन क्यों चुराते थे, क्या कारण था, घर में इतना सारा मक्खन था फिर भी जाकर चुरा कर खाते थे। आचार्य समझाते हैं कि कृष्ण ये बड़े स्वावलंबी थे, अभिमानी, वो कहते थे मुफ्त का माखन नहीं खाऊंगा, मेहनत करके कमा कर खाऊंगा, इसलिए जाकर चोरी करते थे, क्योंकि मुफ्त का माखन क्यों खाऊं यहां पर घर में बैठकर, कल को लोग कहेंगे कि देखो मुफ्त का खाता है बैठकर, तो इसलिए मेहनत करूंगा, तो जाते थे बड़ी मेहनत करते थे, इतना ऊपर होता था माखन, कभी कभी वो टांग कर रख देती थी ताकि हाथ नहीं पहुंचे, तो फिर 2-3 बच्चों को लड़कों को खड़ा करते थे, उसके ऊपर खड़े होते थे, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, तो कमा कर खाते थे, ऐसे नहीं खाते थे वो, तो इसीलिए माखन चुराया करते थे। तो फिर ये सारी शिकायतें यशोदा के पास आने लगी, तो यशोदा सोचने लगी कि हो सकता है कि मेरे घर में जो माखन निकलता है, क्योंकि दासियां निकालती हैं, तो हो सकता है वो बड़े प्रेम से वात्सल्य भाव से नहीं निकालती होंगी, और इसी कारण से ये जो माखन है ये इतना स्वाद नहीं देता होगा। वहीं गोपियां, वो तो कृष्ण को बड़ा प्रेम करती हैं, तो वो बड़े वात्सल्य भाव से निकालती हैं, इसीलिए कृष्ण उनके घर पर जाकर चुराते हैं माखन, खाते हैं उनके घर का और मेरे घर का नहीं खा रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं ही खुद माखन निकालूंगी, मैं ही खुद स्वयं दही जमाऊंगी, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी गायों में से बहुत विशेष गायों को चुना जिन्हें पद्मगंधा गायें कहते हैं, ये गायों का दूध बड़ा स्वादिष्ट होता है, तो उन्होंने इन गायों को चुना और फिर इनको एक विशेष प्रकार की घास जो केवल गोवर्धन में मिलती है, पाई जाती है, उसको खिलाया और फिर उन गायों का दूध स्वयं निकाला। यशोदा माता नहीं निकालती थी दूध, इतने सारे दास दासी हैं वाले हैं, लेकिन उस दिन, उस विशेष दिवस के लिए उन्होंने स्वयं दूध निकाला और फिर दही जमाई, और अब आज के दिवस पर सुबह सुबह उठ गई। अभी कृष्ण सो रहे थे, भागवत में वर्णन है, आचार्य टीकाओं में समझाते हैं कि वो दीपावली का दिन था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। देखिए यशोदा माता इतने सारे दास दासियों के होते हुए भी वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी घर के कार्य करने के लिए, ये नियम था उस समय, किसी को कहना नहीं पड़ता था कि 4:30 बजे मंगल आरती होती है, आप सब समय पर आ जाना, अपने आप लोग उठ जाया करते थे और कार्य किया करते थे। हाँ, कृष्ण सो रहे थे उस समय, छोटे बच्चे सोया करते थे, तो यशोदा माता उठ गई ब्रह्म मुहूर्त में और फिर दही का मंथन करने लगी, उन्होंने दही ली और उसका मंथन करने लगी। तो यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि एक दिन जब यशोदा माता ने अपनी सारी सेविकाओं को अलग अलग कार्यों में लगा दिया, तो वो स्वयं दही का मंथन करने लगी। तो फिर दही का मंथन करते करते क्या कर रही थी वो, यानी यानी ही गीतानी, जितनी भी लीलाएं कृष्ण ने की थी, जो भी उनको याद आ रही थी, यानी यानी जो भी लीलाएं याद आती जा रही थी, उनको गीतानी, गीतों के रूप में गाने लगी कृष्ण की लीलाओं को। ये आध्यात्मिक जगत का नियम है, आध्यात्मिक जगत में जब हम चलते हैं तो वो नृत्य के समान है, ब्रह्म संहिता में समझाते हैं, और जब बोलते हैं तो वो गीत हैं। तो कृष्ण की लीलाओं को वो गीतों में बनाकर गाया करते थे, ये ब्रजवासियों का नित्य का कार्य था, एक दिन पहले जो कृष्ण लीला करते थे उसको गीत के रूप में गाना शुरू कर देते थे। तो अब यानी यानी ही गीतानी, जो भी उनको याद आ रही थी लीलाएं, उनको वो गाती जा रही थी। तो द्वाल चरितानी च, जिसमें कृष्ण के बाल चरित की का वर्णन था, ऐसी लीलाओं को वो अपने द्वारा स्वयं उन्होंने बनाए थे, कोई बाहर के गाने नहीं थे, ऐसा नहीं था कि वो 2 दिन पहले कोई अच्छी पिक्चर देखकर आई थी तो उसके गाने याद आ गए थे उन्हें, वो गा रही थी, वो तो रोज पिक्चर देखा करती थी कृष्ण की, तो जो कृष्ण की लीलाओं को देखे, तो देखिए ये भी एक हमारे लिए जानने योग्य बात है कि हम जिन चीजों को बहुत ज्यादा देखते हैं उन्हीं चीजों का स्मरण हमें आता है। यशोदा माता केवल कृष्ण लीला को देखती थी इसलिए उन्हें स्मरण भी केवल कृष्ण लीलाओं का आ रहा है। हम लोग, खैर आप सबको पता है आप सब क्या देखते हैं, और वही स्मरण आता है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारी आंखें ये कहां जाएं। भागवत बतलाता है कि आंखों की पूर्णता है जब हम कृष्ण को देखते हैं, अन्यथा ये आंखें मोर पंख पर बनी हुई आंखों के समान है, कोई लाभ नहीं है अगर इनसे केवल भोग की चीजों को देखा जाए। तो जो देखेंगे वही चीजें स्मरण आएंगी, जितना ज्यादा कृष्ण को देखेंगे उतना ज्यादा कृष्ण का स्मरण आएगा। तो यशोदा माता केवल कृष्ण लीला देखती थी सुबह से शाम तक, और जब कृष्ण नहीं होते थे, बाद में जब कृष्ण जाने लगे वन में गाय इत्यादि को चराने के लिए, तो फिर जब कृष्ण होते तो उनको देखती, जब नहीं होते तो उनका स्मरण करती, अर्थात अपने हृदय में देखती। तो इसीलिए संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि जब हम मंदिर में आए तो दामोदर के दर्शन करें, राधा गोकुलानंद के दर्शन करें, गौमिताई के दर्शन करें, जगन्नाथ बलदेव के दर्शन करें, और जाते हुए उन्हें अपने हृदय में ले जाए बांध कर इस रस्सी से, गोपाशकंठे न, जो गायों को बांधने के लिए गोकंठ पाशे न निबध्यमानम, तो बांध देना चाहिए उससे। तो लेकर जाएं, और जब बाहर हो इस जगत में तो फिर कृष्ण को हृदय में देखते रहें, उसको स्मरण करते रहें उस रूप को, तब हम भौतिकता से बच सकते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हम लोग गृहस्थ हैं, हमें बाहर रहना पड़ता है, कितने सारे लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता है, तो कैसे हम कृष्ण भावना भावित रह सकते। तो ये यशोदा माता समझा रहे हैं कैसे रह सकते हैं, मंदिर में आइए, रोज कृष्ण का दर्शन कीजिए, और फिर कृष्ण को अपने हृदय में बांध कर ले जाइए, और दिन भर हृदय में उनका दर्शन करते रहे, स्मरण करते रहे, क्या पहना था कृष्ण ने, कैसी बांसुरी थी, राधा रानी के हाथ में क्या था, फूल थे नहीं थे, हार पहना पकड़ा था या नहीं पकड़ा था, या फूलों की टोकरी थी, या कौन सा कलर का फेटा बांधा था जगन्नाथ जी ने, हार कौन से रंग के थे, गौर निताई ने क्या पहना था, उनके सर के पीछे कैसे कौन सा चीज लगी थी, ये सारी चीजों को स्मरण, कौन से हार थे, कितना सारी चीजें स्मरण करने के लिए पूरा दिन चला जाएगा। लेकिन उसके लिए ऐसे दर्शन भी करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है भक्त दर्शन करके घूमते हैं और उनसे पूछा जाए कि भगवान ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, तो फिर से घूमना पड़ता है हमको देखने के लिए। तो ऐसा दर्शन नहीं होना चाहिए, भगवान का दर्शन भी अच्छा होना चाहिए, तब वो हमारे हृदय में बंधे रहेंगे। तो फिर यशोदा माता यानी यानी ही गीतानी, और कौन से गीत, तद बाल चरितानी च, उनके जो बाल चरित्र अभी तक जो उन्होंने क्रियाएं की थी उनको वो गाने लगी, गदी मंथन काले स्मरंती, तो दही का मंथन कर रही थी साथ साथ उस समय उस काले स्मरण कर रही थी उन लीलाओं का भगवान की, और कृष्ण सो रहे थे। और आगे बहुत सुंदर वर्णन है कि उन्होंने क्या पहना था, कैसे उस समय का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे थे, तो ये हम शाम को वर्णन करेंगे इस लीला का। अभी तो प्रारंभ हुआ है केवल, बहुत सुंदर लीला है, तो इस लीला का हम लोग शाम को वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।